नमस्कार, यह आकाशवाणी पटना है। अब आप दिव्या से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किश्त की राशि जारी करेंगे। 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में भेजी जाएगी 10-10 हजार रूपये की राशि। मनरेगा में कामगारों को चेहरा मिलान करने के बाद ही मिलेगा काम। अररिया, किशनगंज और जहानाबाद जिले पायलट प्रोजेक्ट के लिए चयनित। न्यायमूर्ति पीबी वजंथरी आज पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। और विश्व प्रसिद्ध प्रतिपक्ष मेला आज होगा संपन्न। देश विदेश से लोग अपने पूर्वजों का कर रहे हैं पिंडदान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किश्त जारी करेंगे। इस योजना के अंतर्गत श्री मोदी 50 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10,000 रूपये की राशि अंतरित करेंगे। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि इस अवसर पर संकुल स्तरीय संघ और ग्राम संगठन स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि संबंध में सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। योजना का लाभ लेने के लिए 1,05,00,000 से अधिक जीविका दीदियों ने आवेदन किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य मंत्री और अधिकारी उपस्थित रहेंगे। प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत कामगारों का चेहरा मिलान करने के बाद ही काम मिलेगा। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मनरेगा के राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली ऐप में चेहरा पहचान की तकनीक को जोड़ा गया है। मनरेगा में वर्तमान में पंजीयन नंबर के आधार पर काम दिया जाता है। इस ऐप के माध्यम से श्रमिक की वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित होगी और फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जाएगी। अधिकारी ने बताया कि आम दिनों में 21 से 23 लाख तक कामगार इस योजना के अंतर्गत काम करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजधानी पटना में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन करेंगे। मुनलक स्टेडियम के पास बनाए गए साइंस सिटी में विज्ञान आधारित 5 गैलरी बनाए गए हैं। साथ ही 4D थिएटर, ऑडिटोरियम और छात्रों तथा शिक्षकों के लिए डॉर्मेट्री की भी सुविधा उपलब्ध है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित कई मंत्री उपस्थित रहेंगे। जीएसटी दरों में कटौती का लाभ लोगों को कल से मिलने लगेगा। अमूल ने अपने 700 से ज्यादा उत्पादों की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। इसके तहत घी, मक्खन, चीज, आइसक्रीम और अन्य दूध उत्पाद सस्ते होंगे। यह कदम नए जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव के बाद उठाया गया है। विभिन्न उत्पादों की कीमत में 2 से 30 रूपये तक की कटौती की गई है। रेल मंत्रालय ने जीएसटी में कटौती का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए रेलगाड़ियों और रेल परिसरों में उपलब्ध पेयजल बोतल की अधिकतम खुदरा कीमत में कटौती की घोषणा की है। इसमें रेल नील और अन्य सभी ब्रांड शामिल हैं। उपभोक्ता कार्य विभाग ने अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर सुधारों के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर जीएसटी शिकायत निवारण की सुविधा शुरू की है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि सोमवार से प्रभावी संशोधित जीएसटी दर और छूट लागू होने के बाद उपभोक्ताओं की संभावित शिकायतों के समाधान के लिए एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र INGRM पोर्टल पर एक नई सुविधा शुरू की गई है। मंत्रालय ने कहा कि उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1915 पर 17 भाषाओं में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस संबोधन में नागरिकों पर आर्थिक बोझ कम करने और कर ढांचे को सरल बनाने के लिए देश में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। नई दरें कल से लागू हो रही हैं। आज इस क्रम में हम ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर इन सुधारों के संभावित प्रभाव की चर्चा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
सरकार ने जीएसटी सुधारों के अंतर्गत वाहनों की खरीद पर उल्लेखनीय कमी कर लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है। दोपहिया वाहन और छोटे कारों पर कर की दरों को 28% से घटाकर अब 18% कर दिया गया है। बड़ी कारों पर भी अब अतिरिक्त कर को पूरी तरह से हटाकर जीएसटी को 40% कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से बड़ी कारों पर लगने वाली प्रभावी कर कम हो जाएगी, जिससे लोगों के लिए कारें खरीदना पहले से अधिक किफायती हो जाएगा और ऑटो सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी में कटौती से पुराने वाहनों को नई वाहनों से बदलने में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे भारत स्वच्छ परिवहन की तरफ अग्रसर होगा। नई जीएसटी दरों से वाहनों की कीमतें कम होंगी। युवाओं के साथ ही निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए अब वाहन खरीदना और भी आसान हो जाएगा। सौम्या शरण के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फिल्म चलो जीते हैं आज देशभर के लाखों विद्यालयों और लगभग 500 सिनेमाघरों में दिखाई जा रही है। यह फिल्म प्रधानमंत्री मोदी के जीवन की बचपन की एक घटना से प्रेरित है। यह फिल्म एक छोटे बालक नारू की कहानी है जो स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों से प्रभावित होकर अपनी छोटी सी दुनिया में बदलाव लाने का प्रयास करता है। न्यायमूर्ति पीबी वजनथरी आज पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान उन्हें पद शपथ दिलाएंगे। इस संबंध में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। न्यायमूर्ति वजनथरी पटना हाईकोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। श्री वजनथरी अभी पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। गया का विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला आज समाप्त हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सर्वप्रति अमावस्या के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग ने अपने पूर्वजों का पिंडदान कर रहे हैं।
पितृपक्ष के अंतिम दिन श्रद्धालुओं द्वारा सुख शैयादान और पिंडदान द्वारा पितरों को विदाई दी जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग पिंडदान नहीं कर पाते हैं वे अमावस्या के दिन फल्गु नदी के पवित्र नदी के जल से स्नान कर सभी पितरों के नाम से तर्पण और जलदान करते हैं, जिससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मान्यता के चलते आज मोक्ष नगरी में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। 17 दिनों के इस विश्व प्रसिद्ध मेले में देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं और अपने साथ गया जी के यादों को संजोकर ले जा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनसेवा और सुशासन की भावना से सरकार बदलाव और प्रगति के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सेवा पर्व की विशेष श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने किस तरह से कर राहत और सुनिश्चित पेंशन प्रदान किया है।
पिछले 11 वर्षों में सरकार ने मध्यम वर्ग के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने के लिए आगे बढ़कर काम किया है। आयकर दर को कम करने से लेकर रिटर्न सरल बनाने तक हर कदम नागरिकों को उनकी कमाई का ज्यादा हिस्सा अपने पास रखने देने के मूल विचार से जुड़ा रहा है। हाल के कर सुधार इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि सरकार ने राष्ट्रीय विकास के एक स्तंभ के रूप में मध्यम वर्ग पर भरोसा जताया है। एक और बड़ा फैसला ये था कि सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले व्यक्तियों को पूंजीगत लाभ ऐसी विशेष आय को छोड़कर कोई आयकर नहीं देना होगा। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश में कहा था कि सरकार गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए कर राहत सुनिश्चित कर रही है। आयकर रिटर्न भरना आसान बनाने के लिए व्यक्तिगत करदाताओं को अब पहले से भरे हुए रिटर्न उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल अगस्त में एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी थी। ये योजना सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन सुनिश्चित करती है, जो कम से कम 25 साल की सेवा अवधि वाले कर्मचारियों पर लागू होती है। इस योजना से लगभग 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
राज्य में 36 दिनों तक चले राजस्व महाअभियान के दौरान 44 लाख से अधिक लोगों ने जमीन के दस्तावेजों में सुधार के लिए आवेदन दिए हैं। राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि इन आवेदकों को ऑनलाइन जमा करने का काम आज से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि 33 लाख से अधिक लोगों ने जमाबंदी में सुधार के लिए आवेदन दिए हैं। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि अब इन आवेदनों को ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा, इसके बाद सुधार की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभाग ने 6 माह के दौरान सभी आवेदनों का निपटारा करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों से गुजर रही मॉनसून की ट्रफ रेखा के कारण राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर भागों में मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज अररिया, पूर्णिया और भोजपुर जिले में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है।
दिनांक 21 सितंबर 2025 को राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भागों के कुछ स्थानों में जबकि शेष भागों के एक या दो स्थानों में वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण बिहार के जिलों के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। तत्पश्चात अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।
इधर मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में रघुनाथपुर में सबसे अधिक 92.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। महान अभिनेता निर्देशक और निर्माता मोहनलाल को वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार चयन समिति की सिफारिश पर सरकार ने भारतीय सिनेमा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए मलयालम अभिनेता को यह पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है। पटना में जल्द ही वाटर मेट्रो की शुरुआत की जाएगी। राज्य सरकार ने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ वाटर मेट्रो सेवा को लेकर एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है। प्राधिकरण के निदेशक अरविंद कुमार ने बताया कि इस योजना के लिए एक जलयान पटना पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि कल से इस सेवा के शुरू होने की संभावना है। वाटर मेट्रो का संचालन पटना में गंगा नदी में दीघा घाट से कंगन घाट तक किया जाएगा। प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के एस शर्मा का कल हैदराबाद में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। आंध्र प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी श्री शर्मा ने कई वर्षों तक दूरदर्शन के महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया। वे वर्ष 2002 से 2006 तक प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रहे। उन्होंने दूरदर्शन डायरेक्ट टू होम, डीटीएच सेवाओं और डीडी डायरेक्ट प्लस सहित अन्य कार्यक्रमों को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की बड़ी खबर है, भारतीय पेशेवरों पर ट्रंप का करारा प्रहार, अमेरिका ने NH1B वीजा शुल्क बढ़ाकर 88 लाख रूपये किया। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध। प्रभात खबर ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के एक बयान पर लिखा है, TRE4 के बाद TRE5 भी होगा आयोजित। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, पटना जू में न्यूयॉर्क की तरह बाघ और शेर के लिए ग्लास ब्रिज बनेंगे। आज अखबार की सुर्खी है, आज रात 11 बजे से शुरू होगा सूर्य ग्रहण, भारत में नहीं दिखेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किश्त की राशि जारी करेंगे। 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में भेजी जाएगी 10-10 हजार रूपये की राशि। मनरेगा में कामगारों को चेहरा मिलान करने के बाद ही मिलेगा काम। अररिया, किशनगंज और जहानाबाद जिले पायलट प्रोजेक्ट के लिए चयनित। न्यायमूर्ति PB वजनथरी आज पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। और विश्व प्रसिद्ध प्रतिपक्ष मेला आज होगा संपन्न। देश विदेश से लोग अपने पूर्वजों का कर रहे हैं पिंडदान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।